इप्सिता इतना बोलकर वहां से उठकर जा ही रही थी कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? इप्सिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं रूम से अपना पर्स, मोबाइल और बाकी सामान लेकर आती हूँ। नंदिनी उदय के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी नंदिनी की माँ ने सामने रखे बाउल में से एक डिश उदय की प्लेट में सर्व करते हुए कहा, उदय बेटा ये देखो, मैंने अपनी दो डिशेस को मिलाकर एक नई डिश इन्वेंट की है, जरा टेस्ट करके बताओ कैसी है। उदय ने टेस्ट करने से पहले ही उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ आप तो सारी की सारी डिशेस कमाल की बनाती हैं, तो ये भी अच्छी ही होगी। नंदिनी की माँ ने खुश होते हुए कहा, अरे बिना खाए ही तुम ऐसे कैसे तारीफ कर सकते हो? झूठी तारीफ मत करना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर ये डिश अच्छी लगी तो आज इसका वीडियो भी एडिट करके डालूंगी। उदय ने चम्मच उठाया और उस डिश को टेस्ट करते हुए बोला, वाह माँ ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, क्या नाम रखा है आपने इस डिश का? उदय उनकी तारीफ कर रहा था। नंदिनी उदय और अपनी माँ को इस तरह बात करते देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसका भी अपना इतना बड़ा और खुश परिवार होगा, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहती आई थी, और अब उदय और इप्सिता जो साथ होने से उसकी फैमिली जैसे कम्प्लीट हो गई थी। तभी इप्सिता थोड़ी ही देर में रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली। उसने नंदिनी और उदय के बगल में आकर खड़े होते हुए कहा, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्रेकफास्ट हो गया हो तो चलें, वैसे भी आज ऑफिस में थोड़ा टाइम ही लगेगा, अगर मीटिंग में कहीं फंसे तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इप्सिता इतना बोल ही रही थी कि तभी उदय और नंदिनी उठकर खड़े हुए। नंदिनी की माँ ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे आज का दिन काफी अच्छा गया है, तो मैं सोच रही थी कि शाम को आकर हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, कैसा रहेगा? उदय और नंदिनी उनकी बात सुनकर खुश होते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, वैसे भी यीशु के लिए भी खुशखबरी है और आपके लिए भी, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। नंदिनी की माँ ने खुश होते हुए कहा, ओके फिर तुम लोग जाओ, शाम की सेलिब्रेशन की मैं तैयारी करके रखूंगी। इतना सुनकर उदय ने कहा, ओके माँ फिर हम लोग निकलते हैं। नंदिनी ने अपनी माँ को साइड हक किया, फिर वो उदय के साथ निकल गई। इप्सिता भी उनके पीछे पीछे ही फ्लैट से बाहर निकल गई। जैसे ही वो तीनों अपार्टमेंट से नीचे उतरे, उदय अपनी कार में बैठने से पहले दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यीशु बच्चे ठीक से ड्राइव करना, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी के गालों पर किस कर लिया। इप्सिता उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उदय अपनी कार में बैठा और वो वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इप्सिता और नंदिनी दोनों अपनी कार में बैठी। तभी इप्सिता ने कहा, आज मैं ड्राइव करती हूँ। नंदिनी ने ओके कहा और ड्राइविंग सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। इप्सिता ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में वो एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। वहां पहुंचते ही इप्सिता कार से बाहर उतरी। कार पार्क करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड इप्सिता के पास आया। उसने इप्सिता को कांग्रेचुलेट करते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप फिर से इस मंथ की सुपर मॉडल बनी हैं। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू राजेश भैया। नंदिनी और इप्सिता दोनों सीधे उस ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंची। इप्सिता नंदिनी के साथ ही थी। तभी ध्रुव उन दोनों के पास आया। उसने इप्सिता को साइड हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई सुपर मॉडल, तुम तो एक के बाद एक कमाल करती जा रही हो, आज का मैगजीन कवर देखा? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी नंदिनी उन दोनों को बात करते देखकर बोली, हाँ हाँ अब तो मुझे इग्नोर किया ही जाएगा, वैसे भी कहाँ फेमस फोटोग्राफर मॉडल और कहाँ मैं छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट, कहाँ अब मैं तुम दोनों के बीच खड़ी होने लायक हूँ, है ना? नंदिनी को इस तरह ड्रामा करते देखकर ध्रुव और इप्सिता हंसने लगे। तभी ध्रुव ने कहा, तुम छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट, कौन सी ऐसी छोटी मेकअप आर्टिस्ट होती है जिसके अंडर में एक दर्जन मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, बताओ जरा मुझे। नंदिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी इप्सिता ने कहा, वैसे भी ये कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि मेकअप एक्सपर्ट बन गई है, वैसे भी इसे तो ड्रामा करने की आदत है, तो मुझे ये बताओ आज का फोटोशूट मीटिंग से पहले स्टार्ट करोगे या मीटिंग के बाद? ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखते हैं, अगर अभी मीटिंग शुरू होने में टाइम लगेगा तो हम शूट स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मीटिंग के बाद करेंगे। इप्सिता ध्रुव की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। तभी नंदिनी के पीछे एक लड़की आई। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी मैम प्लीज एक बार चलकर आप बाकी मॉडल का मेकअप चेक कर लीजिए, उनका शूट स्टार्ट होने वाला है। नंदिनी ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आती हूँ। नंदिनी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, चलो मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो ध्रुव से बात करने लगी। नंदिनी वहां से चली गई। इप्सिता ने ध्रुव से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बॉस आए नहीं है। ध्रुव ने कहा, अभी तो नहीं आए हैं, पता नहीं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। इप्सिता ने कहा, एक काम करते हैं, हम चलकर निधि से पूछ लेते हैं, उसे तो पता होगा ना। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वे दोनों अपने बॉस की मैनेजर निधि के पास गए। उसने जैसे ही इप्सिता को देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, इप्सिता कांग्रेचुलेशंस यार, अभी मैं तुम्हारी कवर पिक देख रही हूँ, यू लुक सो गॉर्जियस, वेल डन। ध्रुव काफी अच्छा काम किया है तुमने। ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मामूली सा फोटोग्राफर हूँ जो पिक क्लिक करने में अपना 100% देता है, बाकी सब कुछ तो इन मोहतरमा का किया धरा है। इप्सिता उन दोनों की बात सुनकर थोड़ी सी एम्बेरस्ड होते हुए बोली, अरे बस भी करो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करते हो, मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर ये पूछने के लिए आई थी कि बॉस कब तक आएंगे। निधि ने अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड को दो तीन बार स्क्रॉल करते हुए कहा,
आज तो बॉस के सिर्फ हम लोगों के साथ ही एक मीटिंग है, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट वर्क है नहीं, तो बॉस को आने में अभी आराम से एक दो घंटा तो लगेगा ही। क्यों, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? इप्सिता ने निधि की बात का जवाब देते हुए कहा। एक्चुअली वो हम सोच रहे थे कि जब तक बॉस नहीं आ रहे हैं हम अपना फोटोशूट कम्प्लीट कर लें। निधि ने तुरंत ही उनकी बात पर कहा, अरे तुम लोगों का तो काम वैसे भी प्रॉपर टाइम पर चलता है, तुम लोग काम को लेकर इतनी टेंशन क्यों लेते हो? वैसे भी आज तो बॉस तुमसे कुछ ज्यादा ही खुश होंगे, तो आज तो तुम लोग काम ना भी करो तो भी चलेगा। ध्रुव ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, नहीं यार निधि, मैं अपने काम को लेकर बिल्कुल भी ढील नहीं देता, वैसे भी अब जब हम यहाँ पर हैं तो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना है ना इशू? इप्सिता ने भी उसकी बात सुनकर तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ वैसे भी अभी तो काफी कुछ करना है, इतनी छोटी छोटी सी खुशियों में अगर हम खुश होकर काम की छुट्टी लेकर बैठ गए तब तो हो गया। खैर अगर बॉस को आने में भी दो घंटे हैं तो इतनी देर में तो हम आराम से अपना फोटोशूट कम्प्लीट कर लेंगे। ध्रुव और इप्सिता वो दोनों ही काफी प्रोफेशनल थे और अपने काम में काफी अच्छे भी, इसीलिए साथ काम करते हुए वे दोनों इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। दोनों का ही इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम बन चुका था। इतना बोलकर इप्सिता ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, चले। ध्रुव ने अपनी पलकें झपकाई और वो इप्सिता के साथ सीधे स्टूडियो के अंदर गया। इप्सिता अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके सीधे शूट के लिए ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई। इप्सिता ने आज एक शॉर्ट मिनी ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाल हल्के कर ली थे, बिल्कुल लाइट मेकअप में भी इप्सिता काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, उसका मॉडर्न लुक निखर कर आ रहा था।
ध्रुव जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इप्सिता बिल्कुल वैसे ही उसकी बात मानकर उसे पोज दे रही थी। दो घंटे में ही उनका पूरा फोटोशूट कम्प्लीट हो गया। इप्सिता का फोटोशूट कम्प्लीट होने के बाद वो अपनी शूटिंग वाली ड्रेस में ही थी, उसने अभी भी वो मिनी ड्रेस ही पहन रखा था। तभी ध्रुव ने कहा, इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट पिक अच्छी नहीं आई है, कम ऑन एक लास्ट पिक फिर से लेते हैं। इप्सिता ने ओके कहा और वो ध्रुव के मुताबिक पोज देने लगी। जैसे ही पिक क्लिक हुई, ध्रुव ने अपने कमरे में इप्सिता के पिक देखते हुए कहा, ग्रेट, बहुत अच्छी पिक आई है ये वाली। इप्सिता उसकी बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठी और उसने उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा, दिखाओ मुझे भी। अपनी फोटो देखते हुए इप्सिता बोली, हाँ सच में ये पिक तो बहुत अच्छी आई है। ध्रुव ने बाकी की सारी फोटोज देखते हुए कहा, यार वैसे मैंने सुना था कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद और ज्यादा निखर जाती हैं, और तेरे केस में तो ये बात प्रूव भी कर दी। जैसे ही ध्रुव ने ये बात कही, इप्सिता उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी ध्रुव ने कहा, मेरा मतलब है कि जब से तेरी शादी टूटी है उसके बाद से तो कुछ ज्यादा ही तुम ब्यूटीफुल हो गई हो। इप्सिता उसकी बात सुनकर अपसेट हो गई और उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी? और ज्यादा बोलो मत, जब तुम इस कंपनी के लिए फोटोग्राफर हायर किए गए थे तो वो मेरी पुरानी पिक ही थी, सो डोंट यू डेयर। इप्सिता को इस तरह गुस्सा करते देखकर ध्रुव ने उसे साइड हक करते हुए कहा, अरे बाबा तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम शादीवादी के लिए बनी ही नहीं हो, मॉडलिंग में तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है। मैं तो तुमसे पहले भी ये बात कहता था बट मेरी बात सुनती ही नहीं थी। खैर अच्छा ही हुआ जो शादी वाले दिन तुम्हारा दूल्हा ही नहीं आया, वरना मेरे हाथ से तो मेरी इतनी अच्छी मॉडल निकल जाती। इप्सिता उसकी बात सुनकर उसे मारते हुए बोली, जस्ट शट अप, अगर तुमने अब उस बारे में एक और बात भी करी तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी, और ये मत भूलो कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए थे और तुम हो कि हमें ही बीटी बातें याद दिला रहे हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें उस बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं है। इप्सिता को अपसेट होते देखकर ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे यार मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करना नहीं था, मैं तो बस ये सोचकर खुश हो रहा था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और कहते हैं ना भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, और शायद एक तरह से देखा जाए तो ये सब होकर बहुत अच्छा ही हुआ, मुझे मेरी लकी और परमानेंट मॉडल मिल रही और तुम्हारी वजह से मेरा करियर भी पटरी पर आ गया, और सबसे बड़ी बात तुम अब अपना सपना पूरा कर पाओगी। इप्सिता ध्रुव की बात बस चुपचाप सुनती जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। ध्रुव ने देखा कि वो कुछ सोच रही थी और उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगी क्या? ओ सॉरी, एक्स फियांसे, क्योंकि हस्बैंड तो शादी के बाद बनते हैं ना क्रमशः।